नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से, और आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की उन यूनिवर्सिटियों की जिन्हें विश्व रैंकिंग में सबसे अधिक अंक मिले हैं और जिन्हें दुनिया की टॉप 100वीं सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में शामिल किया गया है। हर साल विश्व भर में लगभग हजारों विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है, जिन्हें एकेडमिक रिसर्च, प्रतिष्ठा, स्थान, कैंपस कल्चर, विशेष रिसर्च कार्यक्रमों और लागत जैसे मापदंडों के आधार पर रैंक किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है। इस अंश में हम हाल ही में जारी की गई दो सूचियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025-26 US News रैंकिंग की। इस सूची में लगभग 2500 यूनिवर्सिटियों को मापा गया है और उनमें से 2250 यूनिवर्सिटियों को रैंक किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस सूची में कितनी ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। US News रैंकिंग की सूची में पहले तीन स्थानों पर अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ हार्वर्ड, MIT और स्टैनफर्ड रहीं। वहीं चौथे और पांचवें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों को जगह मिली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी सबसे आगे रही और US News रैंकिंग में 29वें स्थान पर शामिल हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न को 30वां स्थान मिला, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को 34वां, मेलबर्न स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी को 39वां और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड को 43वां स्थान प्राप्त हुआ। सिडनी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को 83rd रैंक मिला, जबकि कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी को 86th रैंक पर नामांकित किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड को क्रमशः 98 और 99 स्थान पर स्थान दिया गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूची जारी की गई है और वो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों की तुलना के लिए एक वैश्विक मानक मानी जाती है। 2026 संस्करण में 100 से अधिक देशों के लगभग 8,500 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है, जिनमें से 1501 संस्थानों को अंतिम रैंकिंग में शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में प्रत्येक यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन किया गया है और उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स को देखा गया है, जैसे रिसर्च और डिस्कवरी, एम्प्लॉयबिलिटी और उसके परिणाम, लर्निंग एक्सपीरियंस, ग्लोबल एंगेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी। QS रैंकिंग के सबसे पहले 10 स्थानों में अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में MIT, हार्वर्ड और स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जबकि UK की ओर से इम्पीरियल कॉलेज लंदन, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ने स्थान हासिल किए हैं। लेकिन इस सूची में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने 19वां स्थान और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने 20वां स्थान हासिल किया है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी को 25वां स्थान मिला है, जबकि कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी को 32वें स्थान पर रखा गया है। QS रैंकिंग में मोनाश यूनिवर्सिटी को 36वां स्थान मिला है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड को 42वां, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को 77th रैंक और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड को 82nd रैंक पर नामांकित किया गया है। इसी विषय को लेकर अब हम जुड़ रहे हैं ऑनहल कैल्डरॉन के साथ, जो RMIT यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स हैं और रैंकिंग्स एडवाइजरी बोर्ड के एक सदस्य हैं।
सो मिस्टर कैल्डरॉन, यू आर द डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स एट RMIT एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द रैंकिंग्स एडवाइजरी बोर्ड। हाउ डू यू सी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज रैंकिंग टुडे एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस वंस?
Well, you know, this year 25 Australian universities went down in ranking, but we still have 9 Australian universities ranked in the world's top 100. So in essence, we are better than what we were in 2018. But, you know, what we've seen this year was that, as I said before, 25 Australian universities went down in performance. But this still puts Australia in a really tight, highly competitive situation, which is really commendable. But it highlights the extent to which this increased competition globally. I mean, Australian universities improving some key metrics, but probably not fast enough compared to what we see happening across Asian countries. And what we are observing in several countries, and that will include India and lots of the countries in the region, is that they're improving at a faster rate because increased investment in funding education, research endeavors, and the quality of education. And Australia's higher education in the past 2 years has been dented by public debates regarding the number of international students in Australia, the university funding, and continual structural changes happening across Australian universities. So those factors have influenced Australian university performance this year. But what we are seeing is increased competition.
From which countries?
We imagine it would be, as I said before, Asian countries are doing improving quite a lot. Particularly, we see some countries in the Middle East, East Asia, and Southern Asian countries that are improving the national system's education. We are increasingly becoming more competitive. So we see some universities, like, you know, in Singapore, also China, Indonesia, Malaysia, they are improving quite remarkably in the past 2 years. And we expect that there will be more Asian universities that will continue to improve as they develop their national systems.
Right. So how do you see Australian universities' popularity, especially among international students coming from India today?
The Australian popularity still remains high. Let's keep in perspective that, Australia has been one of the favorite destinations or preferred destination for international students because it's a country that has a safe environment, is welcoming to international students, and relatively, it has lots of popularity compared to the United States or the United Kingdom. So we still see that there's still lots of opportunities, and I think, as you mentioned, Indian students, and they still have a soft spot for Australian institutions, and Australia has a remarkable quality education, even though we are facing lots of competition internationally.
And do these rankings really matter to the international students who are wanting to come here?
Oh, yes. Increasingly, more international students use global rankings as one of the key instruments or tools for which to base the decision. And of course, the students use a range of parameters or information sources to determine to which countries, which cities, and which institutions they want to study. So, it is an important piece of information to be used. And particularly, those rankings provide a sense of pulse of what's happening across institutions.